आज है 17 जून दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सांसद की गोली और चाकू मारकर की हत्या।
We are shocked and appalled that a member of the UK Parliament, Ms. Jo Cox, was murdered today.
छत्तीसगढ़ में पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में एक महिला की मौत के बाद उठा विवाद। नई राष्ट्रीय नीति में किन किन बातों पर दिया गया है जोर और क्या पंजाब में GM बीजों और रसायन को नकार रहे हैं किसान।
जो BT इसलिए हमने छोड़ दिया कि उसका लगातार जो बिजनेस है ना BT का जो असर कम होता गया, सुंडी उस पे हावी होती गई, उसको सुंडी खाने लगी, पहले सुंडी उसके पास नहीं आती।
होगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार वात्सल्य राय से। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सांसद जो कॉक्स की कल उनके संसदीय क्षेत्र में हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अभी तक की जांच में हत्या के मकसद की जानकारी नहीं हो सकी है। 25 साल में पहली बार ब्रिटेन में एक सांसद की हत्या हुई है। इसके पहले साल 1990 में सांसद इयान गो एक हमले में मारे गए थे। कॉक्स की मौत के बाद ब्रिटेन में यूरोपीय संघ को लेकर होने वाले जनमत संग्रह का प्रचार रोक दिया गया है। कॉक्स ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में रहने की पक्षधर थीं। ब्रिटेन और दुनिया के अन्य देशों के नेताओं ने उनकी मौत पर दुख जाहिर किया है। ब्राजील के पर्यटन मंत्री एनरिकी अल्वेस ने इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले ही उन पर सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास से अवैध तरीके से फंड लेने का आरोप लगा था। वो अंतरिम राष्ट्रपति मिशेल टेमर की सरकार से इस्तीफा देने वाले तीसरे मंत्री हैं। अल्वेस ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑरलैंडो के एक क्लब में मारे गए लोगों के परिजन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अमरीकी कांग्रेस से बंदूकों पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक पास करने को कहा। ओबामा ने लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल लोगों के खिलाफ भेदभाव खत्म करने की अपील की। ओबामा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमरीका इस तरह के नरसंहार पर रोक लगाए। ऑरलैंडो के क्लब में हुए हमले में 49 लोग मारे गए थे। ओबामा ने कहा,
We will not be able to stop every tragedy. We can't wipe away hatred and evil from every heart.
हम हर दुखद घटना को नहीं रोक पाएंगे। हम दुनिया के हर दिल से नफरत और बुराई को दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ हादसों को रोक सकते हैं। हम कुछ जिंदगियां बचा सकते हैं। अगर हम स्मार्ट बने तो हम चरमपंथी हमलों के असर को कम कर सकते हैं। हम अगर कार्रवाई नहीं करते तो हम ऐसे ही कुछ और नरसंहार देखेंगे, क्योंकि हम उन्हें होने देंगे। ये थे बराक ओबामा के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। नाइजर के गृह मंत्री मोहम्मद बेजोम ने कहा है कि बोको हराम के हमले में बचे हजारों लोग बेहद मुश्किल हालात में रह रहे हैं। बोको हराम ने इस महीने की शुरुआत में नाइजर के बोसो में हमला किया था। इस हमले के बाद करीब 50,000 लोगों ने शहर छोड़ दिया था और वो शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। गृह मंत्री ने शिविर का दौरा करने के बाद कहा कि वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत बुरी है। वैज्ञानिकों ने उत्तरी अटलांटिक सागर के तह में छुपे रहस्यों की जानकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान को एटलस नाम दिया गया है। इसमें यूरोप और अमेरिका के शोध संस्थान शामिल हैं। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। जैसा कि आपने मुख्य समाचारों में वात्सल्य राय से सुना, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सांसद जो कॉक्स की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने उनकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और हत्या के मकसद की जांच में जुटी है। कॉक्स की मौत के बाद ब्रिटेन में यूरोपीय संघ में रहने को लेकर होने वाले जनमत संग्रह को लेकर जारी प्रचार रोक दिया गया है। कॉक्स यूरोपीय संघ में ब्रिटेन के शामिल रहने का समर्थन कर रही थी। ब्रिटेन और दुनिया के बाकी देशों के नेताओं ने उनकी मौत पर दुख जाहिर किया है। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुना रहे हैं वात्सल्य राय।
ब्रिटेन सदमे में है और पूरी दुनिया हैरान है। ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी की सांसद जो कॉक्स की कल उनके संसदीय क्षेत्र वेस्ट यॉर्कशायर में हत्या कर दी गई। 25 साल में पहली बार ब्रिटेन की एक सांसद की हत्या हुई है। इसके पहले साल 1990 में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद यान गो आयरिश रिपब्लिकनों के हमले में मारे गए थे, जो कॉक्स पर एक पुस्तकालय के बाहर उस वक्त हमला किया गया जब वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रही थी। उन पर गोलियां चलाई गईं और चाकू से वार किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने हमलावर को ब्रिटेन फर्स्ट चिल्लाते हुए सुना। पुलिस ने इस मामले में 52 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस हत्या के मकसद का पता लगाने में जुटी है। कॉक्स की मौत के बाद ब्रिटेन में यूरोपीय संघ में रहने या अलग होने के मुद्दे पर होने वाले जनमत संग्रह के लिए जारी प्रचार रोक दिया गया है। जो कॉक्स ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में रहने की पक्षधर थीं, ब्रिटेन और दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं ने जो कॉक्स को श्रद्धांजलि दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कॉक्स को ग्रेट स्टार और सबल सांसद बताया है। लेबर पार्टी के नेता जेरमी कोर्बिन ने कहा कि जो कॉक्स मानवता के लिए प्रतिबद्ध थीं। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने अपने शोक संदेश में कहा, ब्रिटेन की संसद सदस्य जो कॉक्स की हत्या को लेकर हम सदमे में हैं और दुखी हैं। हम उनके परिवार और दोस्तों के प्रति शोक जाहिर करते हैं। हम मानते हैं कि ब्रिटेन के अधिकारी इस दिल तोड़ने वाली घटना की जाँच कर रहे होंगे। ये थे जॉन किर्बी के शब्द। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि हत्या के मकसद के बारे में अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। उन्होंने कहा,
das ist ein tragischer Vorfall, der erstens dringendste Aufklärung bedarf und
ये दुखद घटना है। जिंदगी के किसी भी नुकसान की तरह उनके रिश्तेदारों के लिए दिल तोड़ने वाली घटना है, लेकिन मैं इसे ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में रहने को लेकर होने वाले जनमत संग्रह से जोड़ना नहीं चाहती। ये घटना अपने आप में दर्दनाक और नाटकीय है। प्रभावित लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं।
ये थे एंगेला मर्केल के शब्द। नीदरलैंड के वित्त मंत्री यरून डायसा ब्लूम ने जो कॉक्स के निधन पर शोक जाहिर करते हुए कहा,
We observed a moment of silence in our meeting. Out of respect for her, our thoughts are with her.
उनके सम्मान में हमने एक मिनट का मौन रखा। उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ब्रिटेन शांतिपूर्ण राजनीति का प्रकाश स्तंभ है और हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिटेन के लोग अगले हफ्ते शांति के साथ अपनी लोकतांत्रिक पसंद जाहिर करेंगे। ये थे नीदरलैंड के वित्त मंत्री के शब्द। 41 साल की जो कॉक्स शादीशुदा थीं और उनके दो बच्चे हैं। वो पिछले साल सांसद चुनी गई थीं। वो कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी थीं। ब्रिस्टल की सेंट पीटर्स चर्च में उनके लिए प्रार्थना सभा आयोजित की गई। कॉक्स की मौत के बाद उनके पति ब्रैंडन ने नफरत की उस भावना के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है जिसने जो कॉक्स की जान ले ली।
फायरिंग में घायल हुई ब्रितानी महिला सांसद की मौत। ये थी वात्सल्य राय।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
बीबीसी हिंदी।
छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर में एक आदिवासी लड़की को माओवादी बताकर पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में मार डालने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पुलिस का दावा है कि कथित मुठभेड़ में मारी गई लड़की माओवादी संगठन में सक्रिय थी, लेकिन सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि लड़की को गाँव से सुरक्षा बल के जवान उठा ले गए, उसके साथ बलात्कार किया और फिर फर्जी मुठभेड़ में उसे मार डाला गया। रायपुर से आलोक पुतुल की ये रिपोर्ट।
मंगलवार को सुकमा जिले की पुलिस ने दावा किया कि माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई है। पुलिस के अनुसार गोमपाड़ गांव की मड़कम हिड़ में हार्डकोर माओवादी थी। हिड़मे के पास से पुलिस ने जंगली सुअरों को मारने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली भरमार बंदूक भी बरामद करने का दावा किया, लेकिन इस खबर के साथ पुलिस ने कथित माओवादी मड़कम हिड़मे की जो तस्वीर जारी की उसे लेकर विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया में बहस चली तो फिर गाँव वालों ने आरोप लगाया कि गांव में धान कूट रही मड़कम को सुरक्षा बल के जवान घर से लेकर गए और उसका बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बस्तर में लगभग 2 दशकों तक काम कर चुके सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने कहा कि मड़कम हिड़मे का मुठभेड़ पूरी तरह से फर्जी है।
लड़की को घर से ले जाकर सुरक्षा बलों के जवानों ने बलात्कार करने के बाद गोली मार दी। उस मामले में जो जानकारी गांव वालों की तरफ से मिल रही है कि लड़की के शरीर पर 20 गोलियां मारी गई हैं, लेकिन जो वर्दी सुरक्षा बलों ने उस लड़की को पहनाई है उस वर्दी पर एक भी छेद नहीं है गोली का। जिससे ये साफ है कि पहले गोली मारकर बाद में वर्दी पहनाई गई है।
मानवाधिकार संगठन PUCL की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह का कहना था कि बस्तर में एक के बाद एक फर्जी मुठभेड़ हो रहे हैं और सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस को अच्छी तरह मालूम है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न कोर्ट, न गवर्नमेंट, न कोई आयोग उनको पनिश नहीं करेंगे, उन पर केस नहीं चलेगा, उनकी जांच नहीं होगी। इस तरह वहाँ के पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस बेलगाम हो गए, सरकार का नियंत्रण ही पुलिस फोर्स पर खत्म हो गया है।
हालांकि ताजा मुठभेड़ की खबर के बाद आदिवासी नेता सोनी सोरी समेत कई संगठनों से जुड़े लोग बुधवार को ही मामले की सच्चाई जानने के लिए गोमपाड़ गांव के लिए निकले थे, लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर इन सभी लोगों को पुलिस ने शनिवार तक के लिए कोंटा में ही रोक लिया है। इन सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव संजय पराते कहते हैं,
पुलिस प्रशासन सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सच्चाई जानने से लिए गांव में जाने से जिस तरीके से रोक रही है, उससे ग्रामीणों के इस आरोप को बल मिलता है कि मुठभेड़ करने से पहले हिड़मे का को अगवा किया गया था और उसके साथ बलात्कार किया गया है। और इसलिए यदि यह घटना हुई है तो न्यायचित यही है कि इस मुठभेड़ की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच के लिए संबंधित जवानों और पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए।
इस पूरे मामले पर पुलिस का पक्ष जानने के लिए हमने राजधानी रायपुर में बैठे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी से लेकर सुकमा जिले के SP AK Elsela तक से संपर्क किया, लेकिन इनमें से किसी की भी प्रतिक्रिया हमें नहीं मिल सकी। हालांकि पुलिस के एक अफसर का कहना था कि मामले की जांच से पहले पुलिस अधिकारियों का कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन अब तक का अनुभव यही बताता है कि पुलिस अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मीडिया में दावे करती है और जैसे ही कोई मामला फंसता हुआ नजर आता है पुलिस मौन साध जाती है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सुझाव देने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक समिति ने कई सुझाव दिए हैं, जिनमें एक सुझाव ये भी है कि भारत के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए। हाल ही में सुब्रमण्यम ने चिट्ठी लिखकर सरकार को पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा था, जिस पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि नीति किसी व्यक्ति की विरासत नहीं है और राज्य सरकारों की से विचार विमर्श करने के बाद ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। क्या इस समिति ने जो सिफारिशें की हैं उनका संबंध हैदराबाद विश्वविद्यालय और JNU की घटनाओं से है, और इन सिफारिशों में किस तरह के नियंत्रण की बात की जा रही है, जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने समिति के अध्यक्ष TSR सुब्रमण्यम से बात की।
हमारी सिफारिशें जो गवर्नमेंट भारत सरकार को दी है हमने, उसमें 90 मुद्दे एड्रेस किए हैं। उनमें एक मुद्दा ये भी है कि क्या हमारे कैंपसेस में किस हद तक पॉलिटिकल रिलेटेड एक्टिविटीज, कास्ट एसोसिएशन, कम्युनल एसोसिएशन की एक्टिविटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज बेसिकली टेम्पल फॉर लर्निंग है, पढ़ाई के मंदिर हैं, तो वहाँ एक इंटरेस्ट है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट का कि पढ़े, लोग काफी इन्वेस्ट किए हैं मनी में, एनर्जी में, इन टर्म्स ऑफ द टाइम, कई साल, क्या उनका इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। साथ साथ यूनिवर्सिटीज में आईडीएस आने हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आजादी दी है आर्टिकल 19 में, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एसोसिएशन का, क्या तालमेल होना चाहिए बिटवीन दीज सीमिंगली ऑब्जेक्टिव्स, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। हमने कुछ स्पेसिफिक सिफारिश नहीं हमने दिया है, हमने कहा है कि एक तरफ साइलेंट मेजॉरिटी है 90-95% स्टूडेंट्स जिनका मेन इंटरेस्ट है पढ़ना, दूसरा एक एलिमेंट है वहाँ उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी या कास्ट कम्युनिटी के किस्म की एक्टिविटी भी ले आए, इनमें कैसा बैलेंस लिया जाए, क्योंकि बोथ आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर किसकी प्राथमिकता देना चाहिए, अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आए किसकी तरफ हमें आना है, इसमें हमने सिफारिश किया है एक नेशनल डिबेट हो जाए और उसके बाद देख लें कि क्या आर्टिकल 19 में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं।
एक बात और जानना चाहेंगे सुब्रमण्यम साहब आपसे कि कुछ इस तरह की खबरें हम देख रहे थे और चर्चा का विषय भी बनता हुआ सुन रहे हैं कि ये जो हैदराबाद में रोहित वेमुला का मामला हुआ और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस तरह के मामले सामने आए, तो क्या कहीं इन घटनाओं को इस समिति की रिपोर्ट से सिफारिशों से जोड़कर देखा जाना चाहिए?
देखिए, हमारा रिपोर्ट में JNU का या हैदराबाद का डायरेक्ट रेफरेंस हमने नहीं दिया है। हमारी ओन एक्सपीरियंस रहा है, मैं पढ़ा हूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 50s में हमारा इम्तहान एमए का 1.5 साल का पोस्टपोन हो गया है। आज की तारीख में जादवपुर यूनिवर्सिटी में डिले हो गया है 6 महीना के लिए। तो इसमें कई करोड़ बच्चों का करियर में बहुत नुकसान होता है। तो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन जेएनयू इसका नहीं है, ये एक पॉलिसी पॉइंट हम रेज कर रहे हैं कि आर्टिकल 19 का इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए, सीरियस स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसा प्रोटेक्ट करना चाहिए, फ्री एसोसिएशन आइडिया का फ्लरिश करने के लिए क्या मौका देना चाहिए, ये बेसिक्स है।
आपको नहीं लगता कि भारत की राजनीति में कई नेता जो हैं वो छात्र राजनीति से उभर कर सामने आए हैं? यदि इस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शन विश्वविद्यालयों पर लगाए जाएंगे तो छात्र राजनीति से जो नए नेता उभर कर आते हैं उस तरह के नेता भारत को नहीं मिल पाएंगे?
आपने जो पॉइंट उठाया ये बहुत सही है। कई लोग आए हैं, दोनों तरफ आर्ग्यू कर सकते हैं। लीडर का काम है ओवरऑल सोसाइटी में, उसका रोल यूनिवर्सिटी में भी है लेकिन प्राइवेटली सोसाइटी में है। यूनिवर्सिटी का मेन काम पढ़ाई है, तो इन दोनों को कैसा बैलेंस कर लिया जाए इस पे सूझबूझ के साथ एक तरीका रास्ता निकालना चाहिए जो मेजोरिटी स्टूडेंट को नुकसान न पहुंचे।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सुझाव देने वाली समिति के अध्यक्ष टीएसआर सुब्रमण्यम से बात कर रहे थे संदीप सोनी। आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत सुशीला सिंह से, और अब समय समाचार पत्रों की समीक्षा का। वात्सल्य राय समाचार पत्रों के साथ स्टूडियो आ चुके हैं। वात्सल्य
जी, सुशीला जी, एक खबर जो मैं द इंडियन एक्सप्रेस में देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कार्यालय को एक शिकायत मिली है जिसमें बताया गया है कि एक कंपनी ने 5 साल तक कई अहम लोगों के टेलीफोन टैप किए। ये मामला 2001 से 2006 के बीच का है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस शिकायत से जुड़ी खबर को पहली खबर बनाया है और इसमें बताया गया है कि जिन लोगों के फ़ोन टैप किए गए उनमें सुरेश प्रभु, प्रफुल्ल पटेल, राम नाइक, टीना अंबानी, प्रमोद महाजन, अमर सिंह, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा दैनिक भास्कर की लीड खबर कहती है कि 19 से 23 जून के बीच नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अमर उजाला और हिंदुस्तान ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने जिस खबर को लीड खबर बनाया है वो आयकर विभाग से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री आयकर विभाग के अधिकारियों के एक सम्मेलन में गए थे जहां उन्होंने आयकर विभाग के अधिकारियों को सुझाव दिया कि वो मुश्किल सवाल लोगों से पूछें लेकिन दोस्ताना लहजे में पूछें। इस खबर को कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। द हिंदू ने भी इसे लीड खबर बनाया है और बताया है कि मोदी चाहते हैं कि टैक्स का दायरा बढ़े और 10 करोड़ लोग इसमें शामिल किए जाएं। हालांकि इसके लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है। इशरत जहां एनकाउंटर मामला जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है, जो दस्तावेज गायब हुए हैं उससे जुड़ी खबरों को भी अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया है और कांग्रेस ने इस जांच को जो सरकार करा रही है उसे फिक्स और दिखावा बताया है और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके साथ जनसत्ता ने तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ का जो स्थायी पंजीकरण रद्द किया गया है उस खबर को अपनी लीड खबर बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली खबर में दाल और सब्जियों की बढ़ती कीमतों की वजह से घरेलू बजट पर जिस तरह से का असर हो रहा है उसका जायज़ा लिया गया है। खबर की हेडिंग कहती है कि तिहरी बाधा, दाल, टमाटर और आलू की कीमतें एक साथ उछली। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से जुड़ी दो खबरें अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। एक में बताया गया है कि कथित टैंकर घोटाले को लेकर एलजी ने एसीबी से जांच कराने की सिफारिश की है, तो दूसरी खबर बताती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। जनसत्ता ने इसे लेकर एक कार्टून भी दिया है और उस कार्टून में दिखाया गया है कि शीला दीक्षित के घर के बाहर ताला लगा हुआ है और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ भी पलायन शुरू हो गया, यानी शीला दीक्षित दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हो रही हैं।
जी, समाचार पत्रों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वात्सल्य।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब समय है वॉशिंगटन डायरी का। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपने विवादित भाषणों की वजह से भारत ही नहीं वहां भी चर्चा में है। हाल ही में उनका जन्मदिन था जो भारत में भी कुछ लोगों ने मनाया। वॉशिंगटन डायरी में आज ब्रजेश उपाध्याय बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की।
इस हफ्ते मंगलवार को ट्रंप साहब 70 के हो गए। उनकी बातों से यकीन नहीं होता है ना, अभी भी कितनी मासूम बातें करते हैं। ट्रंप टावर के अंदर खासा जश्न मना होगा, लेकिन हम तो बस उनके ट्विटर हैंडल पर रंग बिरंगे उड़ते गुब्बारों का ग्राफिक्स देखकर ही खुश हो लिए। हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने जरूर दिल्ली में बीच चौराहे पर ट्रंप साहब के लिए केक काटा और उनकी तस्वीरों को खिलाया भी। पूरी दुनिया में खबर बनी, ट्रंप काफ़ी खुश हुए होंगे। आखिर कोई तो है जो उनकी इतनी कद्र करता है, वरना अमरीकी मीडिया को तो उनमें सिर्फ खराबी ही नज़र आती है। वैसे केक की जगह लड्डू खिलाना चाहिए था ट्रंप साहब की तस्वीर को। मंगलवार का दिन था, बजरंग बली को लड्डू चढ़ाए जाते हैं उस दिन, और वैसे भी हमारे ये भाई ट्रंप साहब से वही उम्मीद कर रहे हैं कि वो बजरंग बली की तरह एक बार गदा घुमाएंगे और उनके सभी दुश्मन ज़मीन पर। भाइयों से एक और चूक हो गई। बचपन में जन्मदिन के दिन माँ बाप सिखाते थे कि बेटा आज सबकी दुआएं लेना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, बुरा मत बोलना। अब बेचारे ट्रंप साहब को ये सब बातें किसी ने नहीं बताई, तो उनके इन चाहने वालों को तो फ़र्ज बनता था ना। जन्मदिन के मौके पर नई बैंगनी रंग की सूट पहनकर तो आए, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो फिर पूरी दुनिया को कोसा, मुसलमानों को कोसा, और यहाँ तक कि ऑरलैंडो में हुई गोलीबारी के लिए भी ओबामा को कोसा। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ भाई बंधुओं ने जब टोका कि ऐसा नहीं बोलते, तो ट्रंप साहब और फैल गए और कहा, अगर साथ नहीं दे सकते तो मुंह बंद रखो, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। वैसे हमारे दिल्ली वाले भाइयों से एक और गलती भी हुई। ऑरलैंडो का हमलावर मुसलमान था, तो जाहिर है जो मारे गए उनके लिए हमदर्दी जताना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ट्रंप साहब के मुँह पर केक लगाने के बाद उन्होंने मारे गए लोगों के लिए मौन भी रखा। राम राम राम, ये क्या किया आप लोगों ने? जो मारे गए उनमें से ज़्यादातर समलैंगिक थे, क्या सोचेंगे आपके सीनियर लोग? आखिर इसी दिन के लिए आप पर करोड़ों हिंदुओं की जिम्मेदारी सौंपी थी। भूल गए जब फायर फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें शबाना आजमी और नंदिता दास को एक दूसरे से इश्क करते दिखाया गया था, तो किस जोश से आपके लोगों ने पोस्टर जलाए थे, जुलूस निकाले थे। मैं तब एक नया नया रिपोर्टर होता था दिल्ली में, और जब उन लोगों से कुछ सवाल पूछने लगा तो गाली गलौज के साथ साथ मारने पीटने की धमकी देने लगे थे। ऐसे दिग्गजों का नाम खराब कर दिया आपने। खैर, अब तो जो हो गया सो हो गया। ये बताएं, कुछ गिफ्ट शिफ्ट भिजवाया या बस मुंह पर केक मलकर फारिग हो लिए? यहाँ सोशल मीडिया पर तरह तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है उस दिन दुनिया भर में छुट्टी का ऐलान कर देना चाहिए, कोई कह रहा है बड़ी सी परेड हो जिसमें एक से एक सुपर मॉडल्स भाग लें, लेकिन सब की सब गोरी हों क्योंकि दूसरे रंग ट्रंप साहब को पसंद नहीं। एक और कह रहा है कि बड़ी सी गुलेल दी जाए उनको, जिससे उस पर मेक्सिको से आए लोगों को बिठाकर वो एक झटके में सरहद के पार भेज सकें। लेकिन आपके लिए तो बेहतर होगा कि उन्हें एक योगा मैट और बाबा रामदेव या शिल्पा शेट्टी वाली योग की सीडी भेज दें। बेचारे ट्रंप साहब को गुस्सा बहुत आता है, हमेशा लगता है कि ब्लड प्रेशर चढ़ा हुआ है। थोड़ा सा सांस अंदर बाहर करेंगे, पेट फुलाएंगे, पिचकाएंगे तो शायद 70,000 साल जिए। आखिर आपने दुआएं तो मांगी होंगी ना, तुम जियो हजारों साल वगैरह वगैरह। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी वॉशिंगटन।
ब्रजेश उपाध्याय की वॉशिंगटन डायरी आप bbchindi.com पर भी पढ़ सकते हैं। भारत में आज किसानों से पूछे तो पता चलेगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीन संवर्धित बीज और केमिकल खाद का इस्तेमाल महंगा पड़ रहा है, खेत पथरीले हो रहे हैं और उपज कम होती जा रही है, नए नए कीड़ों के कारण फसलें तबाह हो रही हैं। एक ज़माना था जब किसान प्रकृति से जुड़ा था और बीज भी स्थानीय होते थे। हरित क्रांति के बाद GM बीज और केमिकल के इस्तेमाल की दौड़ में पंजाब सबसे आगे है, लेकिन भारत के कई दूसरे राज्यों की तरह पंजाब में किसान अब प्रकृति से नज़दीक होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी जुबैर अहमद भटिंडा के कुछ ग्रामीण इलाकों में गए और वहां से हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
मोरचाट सिंह गांव दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर पंजाब के भटिंडा जिले के इस गाँव में एक ही परिवार के तीन भाइयों ने पिछले 15 सालों में आत्महत्या की है। वो कर्ज के बोझ में डूबे हुए थे। 60 वर्षीय बलजीत कौर दो बार विधवा हो चुकी हैं। पहले उनकी शादी घर के बड़े भाई से हुई थी, उन्होंने जब आत्महत्या कर ली तो बीच वाले भाई से शादी हुई। पिछले महीने उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। सबसे छोटे भाई की शादी करीब के गाँव में हुई थी, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली है। बलजीत कौर अब बिल्कुल तन्हा है। उनके पड़ोसी जब चाय और खाना लेकर आते हैं तो उन्हें दो वक्त की रोटी नसीब हो जाती है। परिवार पर 5 लाख रुपए का साहूकारों और बैंक का कर्ज अब भी है। मरने वाले तो चले गए लेकिन कर्ज का बोझ छोड़ कर गए हैं। कर्ज की वजह बताते हुए बलजीत कौर कहती हैं,
ਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਬੂ ਘੱਟ
ਜੇ ਅਰਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਰੇ ਸਪਰੇਅ ਹੈਗੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਖਾਦ ਬੀਜ ਵੋ ਮਾੜਾ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ ਨਕਲੀ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਓ ਕਾ ਉਸ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸੀ ਲੀਏ ਹਮ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਉਪਜਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ ਤੀਨ ਹਫ਼ਤੋਂ ਸੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੀਏ ਬੈਠੇ ਹੈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਸੇ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਕੋ ਨੌਕਰੀਓਂ ਔਰ ਕਰਜ਼ੋਂ ਕੀ ਮਾਫ਼ੀ ਉਨਕੀ ਖਾਸ ਮਾਂਗੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਹੈ ਸਾਥ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਵੋ ਯੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਯਾ ਜੀਨ ਸੰਵਰਧਿਤ ਬੀਜ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨੇ ਕੀ ਦਵਾਈਂ ਔਰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਜੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੜਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਵੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਯੇ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਜ਼ ਕਾ ਬੋਝ ਬੜਤਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਹੈ ਯਾ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਨਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬੀਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਵਹੀ ਐਸੇ ਬੀਜ ਨਏ ਨਏ ਬੀਜ ਬਣਾ ਕਰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਸਾਥ ਨਈ ਨਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਤੀ ਹੈ
ਖਾਦ ਮੇਂ ਵੀ ਯੇ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ
ਖਾਦ ਮੇਂ ਵੀ ਯਹੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਬਨਾਵਟੀ ਖਾਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਨਾਵਟੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ
ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਯਾ ਜੀਨ ਸੰਵਰਧਿਤ ਬੀਜ ਔਰ ਖਾਦ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਬ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੋ ਯੇ ਬਤਾਤੇ
ਜੋ ਬੀ ਟੀ ਇਸ ਲੀਏ ਹਮਨੇ ਛੋੜ ਦੀਆ ਕਿ ਉਸਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਬਿਜਨਸ ਹੈ ਨਾ ਬੀ ਟੀ ਕਾ ਜੋ ਅਸਰ ਕਮ ਹੋਤਾ ਗਿਆ ਸੁੰਡੀ ਉਸ ਪੇ ਹਾਵੀ ਹੋਤੀ ਗਈ ਉਸਕੋ ਸੁੰਡੀ ਖਾਣੇ ਲਗੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁੰਡੀ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਥੀ
ਸੁੰਡੀ ਮਤਲਬ
ਸੁੰਡੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੀੜਾ ਜੋ ਇਸਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਉਸਕੋ ਸਾਰੇ ਲਗਨੇ ਲਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਥਾ ਪਹਿਲੇ ਹਮਨੇ ਬੀਜਾ ਨਵ ਭਾਰਤ ਵੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਾ ਹਮਾਰੇ 17-18 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੱਲੇ ਕਾ ਤੇ ਅਬ ਜਬ 5-4 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰ 3-4 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਛੋੜ ਦੀਆ ਉਸਕੋ
ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਾ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੋ ਉਸੀ ਕਾ ਖਾਦ ਔਰ ਉਸੀ ਕਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀੜ ਮਾਰਨੇ ਕੀ ਦਵਾਈ ਫਸਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੇ ਫਰਕ ਪੜਤਾ ਹੈ ਕਈ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਤੇ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਉਸਕੇ ਮਤਲਬ ਹਮਨੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਆ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮ ਹੋਈ ਉਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀ ਔਰ ਬੜੇ ਤੋ ਮਤਲਬ ਹਮ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਵੋ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੇ ਅੱਗੇ ਯੇ ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹਮਾਰਾ
ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ
ਮੱਕੀ ਨੂੰ
ਲੇਕਿਨ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਔਰ ਕੁਛ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲ ਮੇਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਭੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਵੋ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਮੇਂ ਮੁਝੇ ਉਨਸੇ ਮਿਲਾਨੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜਬ ਹਮ ਉਨਕੇ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋ ਵੋ ਧਾਨ ਲਗਾਨੇ ਮੇਂ ਵਿਅਸਤ ਹੈ
ਔਰ ਯੇ ਪਲਾਟ ਹਮਨੇ ਅਬ ਤੱਕ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ ਪੂਰਾ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਆ
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਆ
ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਮੇਂ ਇਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਬ ਹਮ ਗੁਲਾਬ ਥੇ ਤਬ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਨੇ ਜੋ ਭੇਜੇ ਆਪਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਖੇਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਤੁਹਾਰੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕਾ ਉਸਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਹੈ
ਹਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਏ ਦੌਰ ਕੇ ਬੀਜ ਔਰ ਖਾਦ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੂਟ ਚੁਕਾ ਹੈ
ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜੋ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਤੇ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਬੁਰਜ ਉਸਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਕੀਆ ਜਾਏ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਗਾਏ ਭੈਂਸੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਫਿੱਟ ਹੋ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ
ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਿਓ ਮੇਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਔਰ ਖਾਦ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਸਥਾਨੀਏ ਬੀਜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇ ਪਕਸ਼ ਮੇਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਔਰ ਖਾਦ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਓਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਥਾਨੀਏ ਬੀਜੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਰਜ਼ੋਂ ਮੇਂ ਡੂਬੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਬੀਜ ਕੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਨਾਮ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਮੇਂ ਦਿੱਕਤੋਂ ਕੋ ਝੇਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ BBC ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ
ਔਰ ਅਬ ਸੁਣ ਲੈਤੇ ਹੈ ਮੁਖਯ ਸਮਾਚਾਰ
BBC ਸਮਾਚਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮੇਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਜੋ ਕੌਕਸ ਕੀ ਕੱਲ ਉਨਕੇ ਸੰਸਦੀਏ ਖੇਤਰ ਮੇਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੀ ਗਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕੇ ਪਰਯਟਨ ਮੰਤਰੀ ਐਨਰਿਕੀ ਆਲਵੇਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਔਰਲੈਂਡੋ ਕੇ ਕਲੱਬ ਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਪਰਿਜਨ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਨਾਈਜਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੈਜੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ ਕੇ ਹਮਲੇ ਮੇਂ ਬਚੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਮੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।